नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज करनाल में किसान आंदोलन के पहले टेक्सटाइल सेक्टर के पैकेज और रोजगार पर बात कर लेते हैं। सरकार कभी नहीं बताती कि कितनों को रोजगार मिला है, लेकिन यह जरूर बताती है कि फला योजना में कितनों को रोजगार मिलेगा। मिलेगा के नाम पर आंकड़ा कुछ भी बता दिया जाता है, कभी 50 लाख, कभी 1 करोड़, तो कभी 7.5 लाख, तो कभी मुद्रा में 8 करोड़ कह दिया गया। आप मंत्रियों के पुराने बयानों को निकालेंगे तो यह पता तो चलेगा कि इतना लाख रोजगार मिलने वाला है, लेकिन फिर उस पर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है कि हमने कहा था इतना लाख मिलेगा, लेकिन मिला उससे कम या ज्यादा। 22 जून 2016 की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस दिन टेक्सटाइल सचिव रश्मि वर्मा ने प्रेस को बताया कि केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 6000 करोड़ के पैकेज देने का फैसला किया। इस पैकेज की मदद से 3 साल के भीतर 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद कई अखबारों ने इस पैकेज की खबर को प्रमुखता से छापा। क्या 3 साल में 1 करोड़ रोजगार पैदा हुआ? 2016 से 2021 आ गया है, यह भी जाने वाला है। क्या सरकार बता सकती है कि 6000 करोड़ के पैकेज से 2016 से 2019 के बीच 1 करोड़ रोजगार पैदा हुआ या नहीं? क्या 1 करोड़ रोजगार नहीं मिलने की आपने कोई हेडलाइन कहीं भी देखी है हिंदी अखबारों में? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद इसलिए आई क्योंकि बुधवार को केंद्र सरकार ने इसी तरह का ऐलान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से टेक्सटाइल सेक्टर को अगले 5 साल के लिए पैकेज देने का ऐलान किया जाता है, 10,683 करोड़ का। 1 महीना पहले 6 अगस्त को कपड़ा राज्य मंत्री ने संसद में लिखित जवाब में कहा था कि सरकार ने 10,683 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार लिखा है, मंत्रालय नहीं। कल की खबर है कि कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक से पहले ही संसद में इसकी सरकारी मंजूरी की खबर दी जा चुकी थी। क्या कैबिनेट ने सरकार द्वारा मंजूर हो चुके फैसले को दोबारा मंजूरी दी है? नहीं तो कैबिनेट की मंजूरी के पहले मंत्री सदन में किसकी मंजूरी की जानकारी दे रही थी? इस मौके पर मंत्रियों ने कहा कि 7.5 लाख रोजगार पैदा होंगे और कुछ और लाख, सेवरल लैक्स कहा गया। हम यह नहीं समझ पाए कि किस हिसाब से 7.5 लाख गिन लिया गया सटीक तरीके से। उसी हिसाब से कुछ लाख, सेवरल लैक्स की गिनती क्यों नहीं हो सकी? क्यों सरकार ने कहा कि 7.5 लाख और कुछ लाख रोजगार पैदा होगा? दूसरा सवाल है कि 10,683 करोड़ के पैकेज से सिर्फ 7.5 लाख और कुछ लाख रोजगार पैदा होता है। 2016 में 6,000 करोड़ के पैकेज से 1 करोड़ रोजगार पैदा हो रहा था। ज्यादा बजट से कम रोजगार, कम बजट से ज्यादा रोजगार पैदा होने का ये गणित आप ही समझ सकते हैं, अगर आपको समझ आती है तो।
कैबिनेट ने 6,000 करोड़ का एक विशेष पैकेज टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग सेक्टर में को बढ़ावा देने के लिए आज उसकी स्वीकृति दी है, और इसका मुख्य मकसद है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्षमता है इस सेक्टर में, उसको पूरी तरह से हार्नेस किया जाए और करीब 1 करोड़ जॉब्स जो हैं, कम से कम 1 करोड़ जॉब्स अगले 3 सालों में जनरेट किए जाएं।
कुल मिलाकर 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपया, 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को इसका रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएंगे।
2016 में 1 करोड़ रोजगार पैदा करने का जो दावा किया गया था वो सरकार ने किया था। आपने अभी सुना कि उस समय की टेक्सटाइल सचिव रश्मि वर्मा खुद कह रही हैं, जिस विभाग के पास यह हिसाब लगाने की क्षमता होती है कि कितनों को रोजगार मिलेगा, वही विभाग अगर संसद में कहे कि रोजगार का डेटा नहीं है तो फिर आप स्तब्ध रह जाते हैं। जब आप रोजगार का डेटा नहीं रखते हैं तो फिर कितना रोजगार मिलेगा ये कैसे बता देते हैं? कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोष सूरत से सांसद हैं, जो कपड़ा व्यापार का केंद्र भी है। इसी 6 अगस्त को मंत्री जी जवाब देती हैं, सरकार टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार पैदा होने का लक्ष्य नहीं तय करती है, अंग्रेजी में लिखा है द गवर्नमेंट डजंट फिक्स टारगेट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन टेक्सटाइल सेक्टर। यह सवाल बीजेपी के सांसद अशोक महादेवराव नेते ने ही पूछा था कि क्या यह सही है कि पिछले 5 वर्षों में टेक्सटाइल सेक्टर में लक्ष्य से बहुत कम रोजगार पैदा हुआ है। सरकार कैसे चल रही है इसे पता करते करते हम कई घंटे कंप्यूटर पर बैठे रह जाते हैं, चल नहीं पाते। अब आपने सुना और देखा कि सरकार कह रही है कि वह टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार के आंकड़े फिक्स नहीं करती है। हंसिएगा नहीं, मुझे सीरियस लोग ज्यादा पसंद हैं। 12 मार्च 2020 को स्मृति ईरानी राज्यसभा में लिखित जवाब देती हैं कि सरकार ने 2016 में निवेश और करीब 1,11,00,000 रोजगार बढ़ाने के लिए 6,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, लॉन्च किया है। इसकी भाषा बता रही है कि 2016 से 19 का यह पैकेज 2020 में भी पूरी तरह लॉन्च नहीं हुआ लगता है, क्योंकि मंत्री कह रही कि इससे 1,11,00,000 रोजगार पैदा होगा, हुआ नहीं है वो नहीं बता रही, मतलब 3 साल में नहीं हुआ। अब देखिए, जो संख्या 2016 से 1 करोड़ थी 2020 में 1,11,00,000 हो गई, कितनी सटीक संख्या है, तभी तो 1.11 करोड़ कहा गया। लेकिन वही सरकार उसी संसद में कहती है कि रोजगार के टारगेट फिक्स नहीं करती, उसी सरकार की मंत्री उसी संसद में रोजगार के टारगेट बताती हैं। यही नहीं, जब सरकार संसद में कहती है कि नौकरी का डेटा नहीं है, वो टारगेट नहीं फिक्स करती है, तो फिर उसके कुछ हफ्ते के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों मंत्री कहते हैं कि 7,50,000 रोजगार पैदा होगा। हेडलाइन तो छप जाएगी, लेकिन जब आप पूछेंगे 3 साल बाद तो जवाब मिलेगा टारगेट फिक्स नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना कि क्यों नहीं समझ आ रहा है? डू यू गेट माई पॉइंट? ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वह 2017 का है, बीजेपी ने प्रमोशन के लिए बनाया था, तब मोदी सरकार के 3 साल हुए थे, उसकी खुशी में बीजेपी मोदी फेस्ट मना रही थी। भारत के 120 शहरों में 26 मई से 15 जून तक मोदी फेस्ट बनाने का ऐलान किया गया था उस साल। इसी कार्यक्रम का ऐलान करते हुए स्मृति ईरानी यूपीए की सरकार की आलोचना कर रही हैं कि उस सरकार के समय टेक्सटाइल जैसे बड़े सेक्टर में डेटा तक ठीक से नहीं रखा जाता था। अभी आपने सुना कि किस तरह 2020-21 में मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कोई डेटा नहीं है, ना ही कोई टारगेट सेट किया जाता है। एक एक लाइन मंत्री जी का ध्यान से सुनेंगे तो आपको शुरू की बातों को देखने का व्यापक संदर्भ मिल जाएगा।
एक तरफ एम्प्लॉयमेंट रिन्यूड प्रदान करना, जैसे कि अपैरल का एक 6,000 करोड़ का पैकेज हुआ है उसकी वजह से, दूसरी ओर एम्प्लॉयमेंट जो पहले जा चुकी थी उसको प्रोटेक्ट करना, तो ये दोनों कार्य हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज तक व्यापक तरीके से डेटा अक्यूमुलेशन के लिए फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन वो फ्रुक्टिफाई नहीं हुए। हाल ही में ये जानकारी आई है कि प्रधानमंत्री जी ने वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग अरविंद पानीगृह के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई है। एक और उदाहरण मैं टेक्सटाइल मंत्रालय का ही दे सकती हूँ। साल 2004 तक टेक्सटाइल कमिश्नर का ऑफिस एकमात्र स्टेटिस्टिक्स ऑफिस हुआ करता था पूरे टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के बाद देश में जो सबसे ज्यादा नौकरियां देने का सेक्टर है उसकी डेटा कलेक्शन 2004 में बंद हो गई थी। दोबारा उसको रिवाइव किया गया है कुछ महीने पहले मेरे द्वारा, ताकि अब एक अक्यूमुलेटेड डेटा पॉइंट सारे वैल्यू चेन से प्रस्तुत कर सके हम राष्ट्र के सामने।
किस आत्मविश्वास से स्मृति ईरानी कह रही हैं कि उनके कार्यकाल में डेटा सेंटर रिवाइव किया गया है, बना दिया गया है? अगर 2017 में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा डेटा सेंटर रिवाइव किया गया था तो वो कहां है? वो सेंटर क्यों नहीं बता रहा है कि 6,000 करोड़ के पैकेज से 1 करोड़ रोजगार मिला या नहीं? उसका हिसाब कहां से पता चलेगा? टेक्सटाइल पैकेज की हकीकत का आलम यह है कि अगस्त 2019 में इंडियन एक्सप्रेस में नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने आधे पन्ने का एक विज्ञापन ही छपवा दिया, जिसमें बताया गया कि भारत का कताई उद्योग सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है, भारी संख्या में नौकरियां जा रही हैं। विज्ञापन में लोगों को कतार में खड़े दिखाया गया है जिसके सामने नो जॉब की तख्ती टंगी हुई है। इसमें लिखा था कि कताई क्षमता का 1/3 बंद हो चुका है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, कताई मिले भारत के किसानों से कपास खरीदने की स्थिति में नहीं है, इसका असर कपास के किसानों पर भी पड़ने वाला है। अगले सीजन में 80,000 करोड़ के कपास उत्पादन की आशा है। अगर यह कपास नहीं बिका तो टेक्सटाइल का संकट खेती तक पहुंचेगा। खेती के बाद रोजगार के सबसे बड़े सेक्टर की ये हालत है। सवाल है कि 6,000 करोड़ का पैकेज देने के बाद भी ऐसी हालत क्यों हुई? कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सेक्टर अपनी व्यथा सुनाने के लिए विज्ञापन छापे। 2016 के पैकेज से 3 साल में 1 करोड़ रोजगार का सृजन होना था, तीसरे साल में यह हालत हो गई। उस समय 20 अगस्त 2019 को हमने एक प्राइम टाइम किया था, उसमें टेक्सटाइल एसोसिएशन के एक सदस्य ने कहा कि 25 से 50 लाख के बीच नौकरियां जा चुकी हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में बिक्री 30-35% घट गई है, निर्यात 30% से अधिक कम हो गया है। 1 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, 50 लाख के जाने की बात आ गई। ये तब की बात है जब कोरोना का कहर नहीं आया था, यानी पहले से ही टेक्सटाइल सेक्टर धीमलाता जा रहा था, पिछड़ता जा रहा था।
स्पिनिंग इंडस्ट्री की हालत काफी दयनीय है। करीब 15-20% कैपेसिटी ऑल इंडिया लेवल पे बंद हो चुकी है। कुछ स्टेट्स में जहां पावर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वहां और ज़्यादा समस्याएं ज़्यादा गंभीर है। पर मेन मुद्दा यह है कि जो कॉटन की प्राइसेज इंडिया में है, वो आज के दिन इंटरनेशनल प्राइसेस से 15% हायर रेट पे मिलता है। तो उसके वजह से कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडिया में है वो काफ़ी कम हो चुकी है। जब कैपेसिटी बंद होगी तो कुछ जॉब लॉसेस भी होंगे। इंडिया में 55 मिलियन स्पिंडल हैं, जिसमें कि डायरेक्टली कम से कम 6-7 लाख आदमी काम करता है और इनडायरेक्टली काफ़ी लोग काम करते हैं। तो यदि आप समझते हैं कि 10-15% 20% कैपेसिटी रिडक्शन है तो जॉब लॉसेस भी हो रहे हैं उसकी वजह से।
2019 में इस विज्ञापन के छपने के बाद हमने कई लोगों से बात करने का प्रयास किया, जो उद्योगपति हैं, बढ़िया सूट पहनते हैं, जिनका अच्छा इंटरव्यू होता है, लेकिन डर के मारे किसी ने जुबान नहीं खोली। जेब में पैसे हैं, जुबान में दम नहीं। जाहिर है 2016 के पैकेज से 1 करोड़ रोजगार पैदा नहीं हुआ होगा। जब सेक्टर ही बैठ गया तो रोजगार कहां से पैदा होगा? जिस सेक्टर में 10 करोड़ से अधिक लोग रोजगार और कारोबार पाते हों, उसकी ये हालत है 2019 में। अब हर साल कोई 2000 करोड़ देकर इस सेक्टर को सहारा दिया जाएगा ताकि 7.5 लाख रोजगार पैदा हो। 16 अगस्त 2019 को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री CII ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को 16 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें बताया गया है कि 1 साल के भीतर निर्यात में ही 35% की कमी आ गई। अप्रैल से लेकर जून 2019 के बीच बांग्लादेश से आयात 40% बढ़ गया, यानी भारत के टेक्सटाइल मार्केट में बांग्लादेश ने अपनी बढ़त बना ली। यही नहीं, चीन ने भारत का धागा लेना कम कर दिया, वो भारत की जगह वियतनाम से धागे खरीदने लगा। भारत 2013 से 18 के बीच चीन को जितना निर्यात कर रहा था, उसकी तुलना में 37% निर्यात कम हो गया। इस बीच वियतनाम ने चीन को धागा निर्यात करने के मामले में 139% की बढ़त हासिल कर ली। 2016 में भी पैकेज देकर कहा गया कि बांग्लादेश और वियतनाम से मुकाबला करने के लिए कंपनियों को मदद दे रहे हैं। इस मदद की यह हालत है कि 2021 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मंत्री बांग्लादेश और वियतनाम का नाम जपते रहे कि भारतीय कंपनियां इनका मुकाबला कर सकेंगी। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में टेक्सटाइल सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने भी यही सब कहा है। फरवरी 2020 में भी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट है कि अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच टेक्सटाइल सेक्टर में -26.6% की गिरावट आई है। पहनने वाले कपड़ों के सेक्टर में, अपैरल सेक्टर में -35% की गिरावट आई है। यह भारत का खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। आप समझ सकते हैं इस सेक्टर में कितनी नौकरियां गई होंगी। इससे पता चलता है कि 6000 करोड़ का पैकेज और 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान हेडलाइन के लिए ही बड़ा था। अब इस पैसे से उद्योगों को कितना फायदा हुआ और उसमें काम करने वाले लोगों के हाथ में कितना गया, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस खेल को समझने के लिए आंकड़े नहीं मिले हमें। लेकिन सवाल पूछा जा सकता है कि ये पैकेज कंपनियों के मुनाफे में जा रहे हैं या रोजगार पैदा करने में। आप कहेंगे कि टीवी में इतना डेटा देना बोरिंग हो जाता है, लेकिन खेल तो दिलचस्प है। जब आप खेल समझेंगे तो डेटा बोरिंग नहीं लगेगा। 12 मार्च 2020 को राज्यसभा में सरकार ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर को टेक्नोलॉजी सुधार में मदद के लिए 2016 से 22 के बीच 17,822 करोड़ दिया जा रहा है, जिससे 2022 तक 1,00,000 करोड़ का निवेश होगा, रोजगार पैदा होगा। हुआ निवेश क्या? 2016 और 22 के बीच 17,822 करोड़ खर्च हुआ, दिया गया, कहीं इसी का बचा पैसा तो नए फैसले के कवर में घोषित तो नहीं हुआ, क्योंकि हमने 2016 से लेकर अब तक के बजट में एमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम के तहत कितना पैसा दिया गया है उसे जोड़ा तो 8,000 करोड़ भी नहीं हुआ। वैसे आपको जानना चाहिए कि कपड़ा मंत्रालय का 2020-21 का बजट 3514 करोड़ था, जिसे संशोधित बजट में 3300 करोड़ कर दिया गया। मुमकिन है बहुत सारा डेटा होने के कारण आपके ध्यान से कुछ बातें छूट गई हों, इसलिए आप जब YouTube में दोबारा देखेंगे प्राइम टाइम तो हेडलाइन का यह खेल समझ आ जाएगा। करनाल में लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना जारी है। जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ रही है, पुलिस और RAF की भी तैनातियां बढ़ रही हैं। आज प्रशासन ने अपना पक्ष जारी किया, यहां लंगर की व्यवस्था भी बढ़ती जा रही है। करनाल गए हमारे सहयोगी रवीश रंजन का कहना है कि सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की तरह करनाल का धरना भी लंबा खींचता हुआ दिख रहा है। करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का क्षेत्र है। बुधवार को प्रशासन ने बात की थी, लेकिन आज दोपहर के 2 बजे तक बातचीत का कोई न्योता नहीं आया। यह सवाल उठने लगा कि क्या सरकार अब आगे बातचीत नहीं करेगी। उधर हरियाणा सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ा दिए और कहा कि किसानों को पंजाब के मुख्यमंत्री की तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी मिठाई खिलानी चाहिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान इस ओर इशारा भी करता है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सियासी जमीन करनाल में अब किसान लंबे समय तक धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए मिनी सचिवालय के तरफ हजारों पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, तो दूसरी ओर हजारों किसान बैठे हैं। हालांकि किसानों ने साफ किया है कि मिनी सचिवालय का घेराव जरूर कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों की सुविधा के लिए सरकारी कामकाज में बाधा नहीं बनेंगे।
जो काम करवाने वाले हैं वो आदमी काम करो, हम उन्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे इतने तक धरना जारी रहेगा।
धरना स्थल पर बड़े अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहे हैं, लेकिन वहीं बैठे किसानों से गुरुवार को प्रशासन ने कोई बातचीत नहीं की। यही नहीं, बुधवार को प्रशासन के साथ बातचीत में शामिल किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी धरना स्थल पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी करनाल में अकेले पड़ गए हैं?
पहली बात तो आएंगे, दूसरी बात ये है कि सभी जगह काम संभालना है ना, खाली यही धरना तो नहीं है ना, बाकी जगह भी है, तो बाकी जगह भी काम संभालना है, वो चले जाते हैं कोई बात नहीं। और यहाँ कोई आज का विशेष काम था भी नहीं, वो गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं। सब पूरा 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 देश साथ में है, सारा संयुक्त मोर्चा साथ में।
उधर किसानों को खुश करने के लिए केंद्र सरकार जहां गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा रही है, वहीं गुरुवार को हरियाणा सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 362 रुपए करने की घोषणा कर दी, लेकिन किसान नेता इसे भी नाकाफी बता रहे हैं।
MSP 2% बढ़ा है, महंगाई अगर 7-8% बढ़े तो इसका मतलब जो सामान हम 1 क्विंटल गेहूं का खरीदते थे वो अगले साल 1 क्विंटल 5 किलो का आएगा, तो ये रेट बड़ा नहीं है, रेट कम हुआ है।
जबकि हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री इस पर लड्डू खिलाए जाने की मांग कर रहे हैं।
मैं इन किसान जत्थेदारों से प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री को लड्डू खिला के गए तो शालीनता दिखाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मिठाई खिलाने का उनका दायित्व बनता है।
किसानों की मांग है कि लाठी चार्ज के जिम्मेदार SDM आयुष सिन्हा को बर्खास्त किया जाए और घायल किसानों को 2,00,000 रुपए का मुआवजा मिले, लेकिन सरकार इनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। इसी के चलते करनाल में किसानों ने खुद चंदा इकट्ठा करके महेंद्र पूनिया जैसे घायल किसानों को 11,000 रुपए भी दिए। फिलहाल किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल के संकेतों से साफ है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य की सत्ता में बैठी बीजेपी कृषि कानून से लेकर मुआवजे तक की किसानों की मांग पर गंभीर नहीं है। अब सबकी निगाहें किसानों की अगली रणनीति पर लगी हुई हैं। चंडीगढ़ से गजाली और करनाल से अशोक माले के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा से कई राज्य अलग हो चुके हैं। इसमें बीजेपी शासित बिहार भी है और गुजरात भी, बंगाल और पंजाब भी अलग हो चुके हैं। इन राज्यों का कहना है कि बीमा कंपनियां प्रीमियम बहुत लेती हैं, जिसके कारण सरकार के खजाने पर दबाव पड़ता है और किसानों को मुआवजा भी कम मिलता है। संसद की स्थायी समिति ने भी फसल बीमा योजना को लेकर कई गंभीर टिप्पणियां की हैं, जिसके बारे में हमने दो दिन 14 और 15 जनवरी को प्राइम टाइम में बताया था। आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट किया। ट्वीट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के हैंडल से हुआ और मंत्री जी ने उसे दोबारा ट्वीट किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर इन दिनों एक हैशटैग अभियान चल रहा है, #PMFBY फॉर किसान। इसमें किसानों को सेल्फी लेकर भेजने के लिए कहा जा रहा है। यह उन किसानों के लिए है जिन्होंने फसल बीमा कराई है। इसमें जीतने पर 21,000 की इनामी राशि दी जाएगी। कुल मिलाकर समा बांधा जा रहा है कि योजना सफल है। इसी ट्विटर हैंडल पर हमें यह पोस्टर मिला जिसमें कृषि मंत्री ने जिसे रीट्वीट किया है। एक पोस्टर बनाया गया है जिसमें तस्वीरों से समझाया गया है कि फसल बीमा योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। अब इसके ऊपर टेक्स्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत से रबी 2020-21 का किसानों द्वारा चुकाए गए 21,484 करोड़ रुपए के प्रीमियम के एवज में कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा 99,044 करोड़ रुपए के दावों का निपटारण किया जा चुका है। ये आंकड़े PMFBY द्वारा किसानों को दिए गए सतत आर्थिक सहयोग को दर्शाते हैं, ये लिखा है। अब इस ट्वीट में यह नहीं बताया गया कि प्रीमियम के तौर पर सरकार ने अभी तक कितना पैसा बीमा कंपनियों को दिया है। सरकार अपना हिस्सा क्यों नहीं बताती है? किसानों का हिस्सा बताया गया है कि उन्होंने 21,484 करोड़ प्रीमियम दिया और दावा मिला 99,044 करोड़। लेकिन सरकार, केंद्र और राज्य सरकार ने कितना प्रीमियम दिया? क्या सरकार नहीं बताना चाहती कि बीमा कंपनियों को कितना फायदा हुआ? यही बात किसान नेता भी कह रहे हैं कि बीमा योजना से बीमा कंपनियों को 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। इसी 10 अगस्त को लोकसभा में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश हुई। उसमें बताया गया है कि गुजरात में 2016 के खरीफ के सीजन से 2019 के खरीफ के सीजन तक 12,021 करोड़ का प्रीमियम दिया गया। किसानों को मुआवजा मिला 5,232 करोड़, यानी गुजरात में ही खरीफ की फसल की बीमा से 3 साल में बीमा कंपनियों को 6,000 करोड़ से अधिक का मुनाफा हुआ। इस दौरान सभी राज्यों में बीमा कंपनियों को प्रीमियम के रूप में 99,550 करोड़ रुपए मिले। बीमा कंपनियों ने दावे के रूप में मात्र 76,000 करोड़ के करीब दिए, यानी उन्हें 24,000 करोड़ से अधिक का फायदा हुआ है। इस रिपोर्ट को पढ़िए तो अभी जो #PMFBY फॉर किसान चल रहा है उसकी हकीकत का पता चलेगा। बिहार में तो 2,444 करोड़ का प्रीमियम दिया गया और किसानों को दावे के रूप में मिला 749 करोड़। बिहार जैसे गरीब राज्य में ही बीमा कंपनियों को 1,700 करोड़ का फायदा हुआ है। किसान फसल के नुकसान की भरपाई के लिए जितना दावा करते हैं, बीमा कंपनियां उतना नहीं देती हैं।
मेरा नाम रामकेसर, डिस्ट्रिक्ट मेरा जीना, गांव मेरा शाहपुर है। मैंने 5 एकड़ का मेरा बीमा करवा था फसल का, 5,500 रुपया मेरे छठे भी नहीं कटे हैं। मैं भर देता हूँ। मेरे 5 किलो में कणक 5 किलो थी, 5 किलो में 1 किलो मेरा खराब हो गया। मेरे कोई मुआवजा नहीं मिला, मेरा पैसा काट लिया सरकार ने। और दोबारा पास में जाते हैं हमें, तो तेरा कितना किला खराब है, तेरे गाँव में 70% फसल खराब होनी चाहिए, उस टाइम में तेरे को मुआवजा मिलेगा। कृषि कार्ड करते समय पहले हमारा बीमा काटने लग रही सरकार, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, धक्के से हमारे पेमेंट लूटी जा रही है।
ये रवीश जी एक बहुत बड़ा घोटाला है जो आम किसान को शायद उतना नहीं पता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, बाजरे का जो किसान है, बाजरे का उसका 500 रुपए का प्रीमियम है, तो 1500 रुपए सरकार भी भरती है। सरकार ये दिखाती है किसान को, आपसे तो सिर्फ 500 रुपए लिए हैं, 1500 रुपए हम अपनी तरफ से भर रहे हैं, तो कंपनी को कितना गया, 2000 रुपया, और कंपनी दे 500 भी नहीं रही है। तो आप सोचिए कि सरकार जो है पब्लिक का पैसा कैसे कंपनियों को ट्रांसफर कर रही है।
तो फसल बीमे का ये है कि हम जो प्रीमियम है वो बैंक से ऑटोमेटिकली हमारा पंजाब के श्री पंजाब नेशनल बैंक में हमारा खाता है, तो वहाँ से हर साल जो पर एकड़ जो है 700 रुपए के आसपास या 800 रुपए पर फसल का कट जाता है, लेकिन आज तक कभी भी मुआवजे के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिला।
44,000 करोड़ रुपया जिमगी है सरकार, 44,000 करोड़ रुपए किसान ना धन्यो बेरा कौन सी कंपनी हमारा बीमा कर रही है, आज तक भी नहीं पता। कंपनी का ही नहीं पता, और फिर सुन लो पूरे ब्लॉक में जब नुकसान हो जाएगा, यू सेक्टर से ले गए ये सब का नाश हो जाएगा, लेकिन मिल रहा है किसान ने।
मैं 10 एकड़ का जमींदार हूँ, हर छमाही 6,500-7,000 के आसपास कटता है, आज तक तो कोई पैसा मिला नहीं।
भारत का किसान 1 लीटर डीजल पर करीब 50 रुपए टैक्स देता है, ऊपर से बीमा का प्रीमियम भी दे रहा है, फायदा बीमा कंपनियों को हो रहा है। कृषि मंत्री को बताना चाहिए कि बिहार और गुजरात की सरकार फसल बीमा से क्यों बाहर है। अगर यह योजना इतनी ही सफल है तो आप ब्रेक ले लीजिए। अफगानिस्तान संकट ने नागरिकता कानून की सीमाओं को उजागर कर दिया है। उस कानून की धाराएं बता रही हैं कि बनाते समय शरणार्थी संकट के अलग अलग आयामों के बारे में कितना कम या आधा अधूरा सोचा गया था। बुधवार को ही तमिलनाडु विधानसभा में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है और कहा गया कि श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। सौरभ की यह रिपोर्ट देखिए।
तिलनगर के गुरुद्वारे में झाड़ू लगा रहे 60 साल के दिलीप सिंह 1 महीने पहले तक अफगानिस्तान के जलालाबाद में आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। वहाँ खुद का जमा जमाया कारोबार था, लेकिन तालिबान के आने से महीने भर में इनकी जिंदगी बदल गई। दिलीप 24 अगस्त को विशेष विमान से अफगानिस्तान से भारत पहुंचे हैं। कल ही इनका क्वारंटीन खत्म हुआ है। अब यही गुरुद्वारा इनका घर है और यहाँ की सेवा इनका रोजगार।
हम गुरुद्वारे की सेवा भी करते थे और दुकानदारी भी करते थे।
बिजनेस आपका वहाँ पे?
ना, छोटी दुकान थी।
अब यहाँ क्या कर रहे हैं?
हम यहाँ आए सोचते हैं क्या करें, बेकार हैं। हम सरकार से धन्यवाद करते हैं कि सारे हेल्प करे, आसान कार दी जगह और बच्चे की पढ़ाई के लिए और सब कुछ कोशिश करे किसानों मिल जाए।
यही कहानी सभी सिख शरणार्थियों की है जो अपना घर बार छोड़कर भारत पहुंचे हैं।
अब ऐसे ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, रहने की जगह नहीं है और सब काम हमारा उधर था वो सब खराब हो गया, खाने के लिए पैसे नहीं है, रहना मुश्किल है ना इधर, पैसे बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है। अभी तो हमारा प्रधान साहब सेवा कर रहे हैं गुरुद्वारे में, लंगर की सेवा सब कुछ कर रहे हैं।
जो सिख पहले भारत आए हैं उनके लिए भी जीवन यापन बहुत मुश्किल है। भारत का पहचान पत्र ना होने के कारण ना ये लोग कोई ढंग की नौकरी कर सकते हैं, ना घर खरीद सकते हैं और ना ही अच्छे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। मंजीत कौर अपने छोटे बच्चे के साथ काबुल से आई हैं, पर अब नहीं पता कि आगे क्या होगा।
हम लोग यहाँ पर आए तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम लोग यहाँ पर आए हमारे हर तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, या भी हमारे एनजीओ यहाँ पर हमारा हमारी हेल्प करते हैं, या भी की गुरुद्वारे हमारे मर्दों का काम करने है, या वो दुकानों पर जाकर काम करते हैं। उसके अलावा हम लोग जिन हालात में वहाँ पर छोड़ कर आए, हमारे लिए सब कुछ वहाँ पर छूट गया हमारा।
यूनाइटेड सिख और सोबती फाउंडेशन जैसे कुछ एनजीओ हैं जो इन शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आए हैं।
जो इनको वीजा दिया गया है, वीजा में कैटेगरिकली ऑब्जर्वेशन 12 में लिखा गया है कि दे आर नॉट अलाउड टू डू एनी जॉब्स, बिजनेसेस और एजुकेशन। तो अगर ये बेसिक तीन चीजें इनको यहाँ पे नहीं मिलेंगी तो इनके यहाँ रहने या न रहने का कोई वही नहीं रहता कि किस लिए यहाँ आए हुए हैं ये लोग।
नया नागरिकता कानून अभी लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके तहत सिर्फ उन्हीं गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी जो 2014 से पहले भारत आए। यही वजह है कि बड़े सिख संगठन नागरिकता कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
जो लोग अफगानिस्तान से यहाँ आ चुके हैं वो भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं, लेकिन अब इनके पास समस्या है कि इनका सब कुछ पीछे छूट गया, न रहने के लिए इनके पास छत है, न रोजगार, और काम भी नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ के कागज नहीं है। तो इनकी उम्मीद और दरख्वास्त सरकार से यही है कि इनके लिए कोई ऐसी स्कीम लाएं जिससे ये भी मुख्य धारा में आ सकें, यहाँ नौकरियां कर सकें और यहाँ हिस्सेदारी भी ले सकें। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।